La कीजिए। जी जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम।
जी सर, मेरा क्वेश्चन है, सूरह फातिहा को उम्मुल किताब क्यों कहते हैं सर?
उम्मुल किताब, किताब सांचे को कहते हैं और ये सांचे की अम्मा है। यानी ये जो जहन बनाती है, जिस तरह से ये सूरह फातिहा जहन खोलती है, देखे ना, इंतहाई मुख्तसर 7 जुमलों में अल्लाह रब्बे करीम क्या कह रहे हैं, क्या कहलवा रहे हैं इंसान से। इंसान को ये दर्स दे रहे हैं कि ये कहो, क्या कहो, कि मैं तारीफ करता हूं उस रब की जो हर हालत में मुझे वसाइल फराहम करते हैं। और मैं ये वादा करता हूं कि मैं तेरी ही बात मानूंगा और तुझी से मदद चाहूंगा। तू मुझे ऐसा रास्ता दिखा दे कि तेरे बनाए हुए निजाम में मैं अपना रोल अदा कर सकूं। मुझे ऐसी राह मत चलाना जो निजाम मुझ पे नाराज हो जाए, और ना ही मुझे इस निजाम से दूर होने देना। ये देखिए, 7 जुमलों में ये मैंने खुलासा कर दिया। क्या बात कही कि अल्लाह के सिस्टम की बात कही, उसमें उससे मुतालिक और मुनसलिक होने की बात कही, और उस सिस्टम में अपना रोल अदा करने का की इल्तजा की गई। तो यही तो असल सांचा है। तो असल सांचे की वजह से इसको उम्मुल किताब कहा गया।
जी सर,
ठीक हो गया जी?
जी सर, ठीक हो गया।
आप इसकी मानवियत के हवाले से इस पे गौर करके देखें, ये बहुत बड़ी पुकार है।
जी सर,
बहुत बड़ी बात। अल्लाह तबारक व तआला का अंदाज़े तालीम देखें कि बजाय इसके कि हम एक बात सुनाएं, वो हमसे कहलवा के हमें सिखा रहे हैं। गौर करें। देखे ना, बच्चे को कोई बात बताई जाती है तो वो सीखता है। अल्लाह अपनी मखलूक के मुंह से वो कहलवा रहा है जो वो उसको सिखाना चाहता है।
जी।
हम मुंह से कह तो रहे हैं लेकिन सीख नहीं रहे। अल्लाह में सीखने की तौफीक अता फरमा दे। देखे ना, अल्लाह रब्बे करीम ने तो इंतहाई मुख्तसर बात, मुख्तसर अल्फाज में सारी ही बात, पूरी किताब का खुलासा कर दिया। पूरी किताब की तालीम का खुलासा जो है वो हमें यहाँ मिल जाता है सूरह फातिहा में। इसीलिए इसका नाम फातिहा की किताब जहन खोलती है। ये सूरत जो है जहन खोल देती है बंदे का कि वो अल्लाह से वो बात कह रहा है कि जी मैं आपसे ये इल्तजा कर रहा हूँ, और आगे पूरा फिर कुरान अल्लाह रब्बे करीम पेश कर देता है कि ये मेरा सिस्टम समझ लो, ये सिस्टम की साख्त को समझ लो और अपना रोल भी समझ लो। ये आगे पूरी किताब में, इसलिए भी इसको उम्मुल किताब कहा गया।
जी
जी, थैंक यू
वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।
वेलकम। जी
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
नाइट आप कर लो। ہے وہ بات. اوکے اوکے تھینک یو جزاک اللہ. باتیں میرے مراد سے ہیں سر. 396 پیج نمبر. فرمایا یہ کتابیں پڑھ لینا, کتابیں لکھ لینا, ترجمہ کرنا, یہ مراقبے کرنا روحانیت نہیں ہے. اس سے روحانیت کے بارے میں آپ کے علم میں اضافہ ضرور ہو سکتا ہے, لیکن یہ سب روحانیت بہرحال نہیں. مرید نے عرض کی حضور تو پھر روحانیت کیا ہے؟ فرمایا روح کا الفاظ روحانیت ہے. روحانیت کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا روحانیت ہے. روح کو سمجھے, روحانیت کیا ہے اس کو سمجھے. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. یہاں پہ جو مراقبہ کرنا اور روحانیت نہیں.
ہاں یہ دیکھیں نا, یہ تو روحانیت جی, یہ جو مراقبے کرنا, یہ ورزشیں کرنا, یہ مطالعے کرنا, یہ وہ طرز فکر حاصل کرنے کے لیے بہت معاون ہے جو روحانیت کو حاصل کر سکتا ہے. دیکھیں نا, پہلے چیز تو وہ ذہن بنانا ہے. اب اگر آپ کا ذہن نہیں بنا ہوا تو دیکھیں نا, اب یہ ہم مغالطے میں تھے کہ محض کتابیں پڑھ لینے سے شاید روحانیت آ جائے گی, تو بتایا کہ نہیں, روحانیت جو ہے وہ پریکٹیکل کا نام ہے. یہ تھیوریٹیکل نالج ایک سطح ہے, پریکٹیکل کرنے کے لیے بھی نالج چاہیے نا. اب دیکھیں نا, آپ کو پہلے تو یہ مطالعہ میں بات آئی کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کیسے قائم کیا جاتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب تعلق کی مشق کرنا, اتنی مشق کرنا کہ ہر وقت آپ کو یہ محسوس ہو کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں یا اللہ میرے ساتھ ہے, یہ ایک کیفیت کا حصول جو ہے. اب اس کیفیت کے بارے میں میں کتنا بھی پڑھ لوں, لیکن میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کیفیت حاصل ہوگی جب تک مجھے اس کا عملی تجربہ نہ ہو جائے. تو حضور مرشد کریم کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے کہا کہ روحانی صلاحیتوں کو استعمال کرنا, پہلے تو فرمایا کہ روح کو سمجھے. آپ روحانی بننا چاہتے ہیں تو ہر بچہ پیدا ہوتے اسی روح کا حامل ہے, تو چھوٹے بچے والی عادتیں اپنائیں, چھوٹے بچے والی طرز فکر اپنائیں. وہ کتنا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اس کی کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی. اسے جو مرضی, جیسا مرضی جوتا پہنا دو, جیسے مرضی کپڑے پہنا دو, کھانے کو دے دو نہ دو, بھوک لگے گی روئے گا, لیکن اس کا کوئی ڈیپینڈنسی نہیں ہے اس میں. سوری, مطلب وہ صرف ڈیپینڈنٹ ہے, وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. وہ کوئی اپنی مرضی نہیں کرتا کہ مجھے یہ کھلاؤ تو میں یہ کھاؤں گا, نہیں. وہ پھر بعد میں جب شعور آتا ہے تب بولتا ہے, ادروائز اسے جو مرضی کھلا دو وہ کھا لیتا ہے. وہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ
سر یہ جو پیچھے
جی کیا
جی سر میں کہتی ہوں سر یہ 392 پہ بھی پھر یہی بات ہو گئی, بھائی جہاں اللہ کا معاملہ آ جائے وہاں ڈیپینڈنٹ ہو جائے.
اللہ آپ کو خوش رکھے.
معاملہ ہو وہاں انڈیپینڈنٹ.
ہاں کیا کہا, دوبارہ پڑھیں اس جملے کو, یہ بڑا قیمتی جملہ ہے. جی
بھائی جہاں جی سر جہاں اللہ کا معاملہ آ جائے وہاں ڈیپینڈنٹ ہو جائے, اور جہاں دنیا کا معاملہ ہو وہاں انڈیپینڈنٹ رہے.
ہاں یعنی آپ نے اللہ پہ ڈیپینڈ کرنا ہے, دنیا کے لیے آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, دنیا سے آزادی حاصل کریں, اللہ کی غلامی اختیار کریں. غور کریں, ہم دنیا کے غلام ہیں, ہماری ڈیپینڈنسی جو ہے وہ دنیا پہ ہے. ہم اللہ کے سامنے انڈیپینڈنٹ ہوئے, الٹا کیا ہوا نا. تو یہ الٹے نظام کو سیدھا کرنے کا کھیل ہے روحانیت. تو یہ زاویہ فکر, طرز فکر کی تبدیلی سے آغاز ہوتا ہے روحانیت کا سفر. طرز فکر ہی نہیں تبدیل ہوئی تو کیا فائدہ, روحانیت تو نہیں آئے گی. روحانیت طرز فکر کی تبدیلی کے بعد آئے گی. جب हाँ, जब आपको मुर्शिदे
जो
करीम
होगा तो
की तर्ज़े फिकर मिलने के बाद उनका ज़हन मिलेगा। अब देखे, मैं ये बात कितनी बार अर्ज कर चुका हूँ जी, वो ज़हन के बाद वो सलाहियतें मिलेंगी, वो सलाहियतें, उनका नाम है रूहानियत। हम अपनी सलाहियतों को लेके बैठे हुए कि रूहानी बन जाए, कैसे बन जाए भाई? अब देखे ना, ये किताबें पढ़ने से हमें मुर्शिदे करीम के जहन का पता तो चला ना कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि जी मैं कितना भी चीखता चिल्लाता रहूं कि खाना बड़ा मज़े का होता है और खाना बड़ा मज़े का है और उसका लुत्फ और उसका जायका एक्सप्लेन करता रहूं, लेकिन मैंने खा के देखा नहीं कभी खाना, तो मुझे क्या पता कि क्या असल में जायका किसे कहते हैं। तो यही मिसाल रूहानियत की है, हम रूहानियत के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी तो वो तर्ज़े फिक्र मुंतकिल नहीं हुई जो मुर्शिदे करीम की तर्ज़े फिक्र है। फिर उसके बाद उनका जहन मिलेगा, फिर उनकी सलाहियतें मिलेंगी, फिर उनका इल्म मिलेगा, फिर उसके इस्तेमाल का करीना जब आ जाएगा तब हम कह सकेंगे कि जी हमें कोई थोड़ी सी रूहानियत की शुद्ध बुद्ध पैदा हो गई। अब क्लियर हो गई बात?
जी सर, बहुत क्लियर हो गई। देखो, थैंक यू सो मच सर।
मोस्ट वेलकम जी। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हाँ नहीं, आप वैसे भी पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं मैं बोला ही कुछ नहीं, मैंने कहा जी हाँ पढ़ सकते हैं, इतना कह के मैं खामोश हो गया।
आवाज नहीं आ रही सर।
मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जी हाँ पढ़ सकते हैं।
अच्छा अच्छा सही, तो मुझे वही इसी के बारे में पूछना था।
चलो, इसका जवाब एक ही लफ्ज में है कि जी हाँ।
सर,
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा सवाल है
जी,
सूरह बकरा की नवाही से है, वआमिनु बिमा अंजलतु मुसद्दिकन लिमा माकुम वला तकूनु अव्वल काफिरिन बी वला तश्तरु बिआयाति समनन कलीला वइयाय फत्तकून। सर मुझे यहाँ पर ये जो वला तश्तरु भी आया जो सबन कलीला है ना, इसको थोड़ा वादा कर देंगे सर।
क्या इसका तर्जमा क्या लिखा हुआ है?
और इस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक में नाजिल फरमाई, उसके साथ तुम ही पहले काफिर ना बनो और मेरी आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमतों पर ना फरोख्त करो और सिर्फ मुझी से डरो।
बस यही तर्जमा, यही तो बात कही है अल्लाह ने कि भी ईमान लाओ जो किताबें पहले भेजी हैं, ये उनकी तस्दीक कर रही है, आपने उनमें गड़बड़ कर दी है, ये उसको रिफाइन करके बता रहा है। यानी पहले कौन सी किताबें आई हैं? तौरात आई है, जबूर आई है, इंजील आई है, اور دیگر صحائف جو دیگر انبیاء کرام پہ آئے، یعنی ان کی ساری تعلیمات کی یہ تصدیق کر رہی ہے، اور تم میری باتوں کو مطلب چورن بنا کے نہ بیچو. چورن بنا کے بیچنے کا کیا مطلب ہے کہ کسی کے بھلے کی بات کو تم قیمت لگا دیتے ہو اس کی، کہ جی تمہیں چڑھاوا کوئی چڑھائے گا تو پھر بتاؤ گے. ایسا مت کرو.
اچھا، یہی سمجھنا چاہ رہی تھی.
جی جی، میں نے عرض کر دی جو میری سمجھ میں آیا.
دوسرا بھی اسی سے ہی ہے، یعنی 42 میں وہ بھی نواحی سے ہی ہے، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. سر یہ تو ولا تلبسوا، یہ حق مدرمات
حق، میں نے حقیقت، ایک چیز حقیقت ہے اور ایک چیز باطل ہے. باطل کا مطلب ہے جو حقیقت نہیں ہے، تو حقیقت کو آپس میں گڑمڑ نہیں کرو. یعنی فکشن، باطل فکشن کو کہیں گے. اگر ہم باطل کا ترجمہ کریں تو وہ فکشن ہے. تو فکشن کو، یعنی اپنی بنائی ہوئی جھوٹی باتوں میں سچ کی آمیزش نہیں کرو. یعنی یا تو سیدھے سیدھے شیطان بن جاؤ یا رحمان بن جاؤ. یہ جو درمیان میں کھچڑی پکا کے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بخشش ہو جائے گی نا، یہ غلط ہے. یہی اللہ رب کریم نے منع کیا کہ نہیں، حق کو کسی فکشن کے ساتھ مکس اپ مت کرو. تلبسو کا ایک لفظ مفہوم یہ نکلتا ہے کہ یہ جو ہم حقیقت پہ فکشن کا، یا فکشن کو حقیقت کا لبادہ اوڑھ دیتے ہیں، اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں. فکشن کے اوپر حقیقت کی چادر ڈال دی اور کچھ باتیں سچی بولی اور باقی اپنی اپنا چورن بیچ دیا. تو یہ چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے کہ کھرے بن جی فرق کرنا سیکھو کہ حق کیا ہے اور فکشن کیا ہے، حقیقت کیا ہے باطل کیا ہے، اور ان کو مکس اپ مت ہو. اگر کوئی مکس اپ کر کے آپ کو سنائے تو آپ میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ آپ فوراً آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہ حقیقت میں فکشن کا تڑکا لگا رہا ہے، یا فکشن کو حقیقت کا تڑکا لگا کر بیچ رہا ہے.
جی سر،
پوری ہنڈیا حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟
جی سر. سر ایک اور سوال کر سکتے؟
جی جی
جی سر. آپ نے میں ایک بار سوال کیا تھا کہ شعور سمجھے وہ آپ کا شعور ہے.
دوبارہ فرمائیں.
ہم اسی شعور کو
جی جی بولیں بولیں.
میں نے ایک بار آپ سے کہا کہ یہ شعور کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس اینگل سے آپ نے سمجھا وہ آپ کا شعور ہے.
جی، میں نے اس کی بڑی لمبی تشریح کی تھی کہ شعور کا مطلب ہے اطلاعات کو آپ کس ترتیب سے اپنے ذہن میں کن پابندیوں کے ساتھ جکڑ کے سجاتے ہیں. میں نے شعر کے لفظ سے وضاحت عرض کی تھی کہ جن اطلاعات کو جو ہمیں ماحول سے ملتی ہیں، جو ہمیں اپنے انر سیلف سے ملتی ہیں، یا جو اللہ رب کریم ہمارے ذہن میں نازل فرماتا ہے، ہم ان اطلاعات کو کس ترتیب سے سجاتے ہیں یا کس طرح سے ان کو سمجھتے ہیں، یہ ہمارا شعور بن جاتا ہے. وہ جو ہماری سمجھ ہے ہم اس کو شعور کہتے ہیں.
جی سر. سر یہاں پر ایک بات یہ آپ سے ملتی ہے کہ ہم یہی ذہن جو ہم نے سمجھا، یہی ذہن ہم لے کر جائیں گے، یہی ذہن جائے گا.
جی ہاں، بالکل 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 صحیح سمجھی. دیکھیں نا، آج سے پہلے انسان سمجھتا تھا کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے، یہ اس کی سمجھ تھی، یہ اس کا شعور تھا. ٹھیک ہے، پھر سائنسدانوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ نہیں، سورج اپنی جگہ ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے. یہ شعور کا ایک دوسرا درجہ آ گیا. اب آ کے انسان کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ سب کچھ گھوم رہا ہے، सूरज अपने मदार में घूम रहा है, जमीन उसके गिर्द घूम रही है, चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है, ये सारे एक बड़े निजाम शमसी सॉरी कहकशानी निजाम का हिस्सा बनकर आगे कहीं घूम रहे हैं। अब जहन बढ़ता जा रहा है ना, तो ये शऊर बढ़ता जा रहा है, आगही बढ़ती जा रही है। पहले हम सूरज को तुलू होते देखते थे तो कहते थे कि सूरज घूम रहा है, सूरज चढ़ा, सूरज निकला, सूरज गुरूब हो रहा है, ये आज भी कहते हैं, लेकिन अब समझते हैं कि नहीं, असल कहानी ये है कि ये सब एक दूसरे के गिर्द घूम रहे हैं।
पर एक बात मुझे क्लियर नहीं हो रही है, जैसे अब्बा की लेक्चर में अभी सुन रही थी तो वहाँ पर जब अब्बा ने फरमाया कि शऊर फिक्शन है, तो
जी हाँ, तो यही तो अभी, हाँ अभी फिक्शन का क्या बताया मैंने, देखे ना, यही तो बता रहा हूँ कि हम तो असल बात तो समझे ही नहीं, हम तो जाहिरी देख रहे हैं ना, जो जाहिर में देख रहे हैं। अब पहले क्या समझते थे कि सूरज जमीन के गिर्द घूम रहे और जमीन को बैल ने अपने उस पर उठाया हुआ सींगों पे, ये इस तरह की कहानियां तो ये फिक्शन है ना। अब इसमें देखे ना, फिर वक्त के साथ साथ तब्दीली आती गई, ये सब फिक्शन है। हकीकत क्या है? हकीकत वो है जो अल्लाह के जहन में है कि अल्लाह ने एक निजाम बनाया है और उस निजाम को चलाने के लिए आगे स्क्रीनें बनाई हैं, उन स्क्रीनों के लिए निजाम बनाए हैं। ये पूरा निजाम जब आप इस तरह समझेंगे तो फिर आप कहेंगे कि मेरा शऊर और बड़ा हो गया। जितने बड़े शऊर को हासिल कर लेंगे उतना बड़ा शऊर साथ जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया,
आपका शुक्रिया सर। एक और बहन में आ रहा है, कर सकती
जी जी फरमाइए जी जी।
ये सर, ये जो बकरा है इसको बजाहिर तो समझ में आ रहे अरबी वर्ड यानी गाय, इसका असल मफहूम बता सकते हैं सर प्लीज?
मुझे भी बस इतना ही मफहूम मालूम है कि गाय का तस्करा है, गाय भी वो जो कि इस चूंकि इसमें वो पूजा करते थे बैल की, मिस्री लोग जो थे ये गाय की पूजा करते थे, जैसे हिंदू करते हैं ना, गाय को माता कहते हैं, जिसको इन्होंने खुदा बनाया हुआ था कि जी ये दूध देती है तो हम इसके गोश्त खाते हैं, तो हमें ये माँ की तरह पाल रही है, तो उन्होंने इसको खुदा का दर्जा दिया हुआ था बैल को, ठीक है
जी।
तो वो इस सूरत में यही बताया कि भाई अपने बने हुए तसव्वुरात को ज़िबा करना पड़ेगा आपको
जी।
ये जो गाय से वाबस्ता तसव्वुरात थे ना, उन्हीं को तो उन्हीं के हाथों ज़िबा करवाया ना
जी सर। जी सर, आयत भी है
जी।
थैंक यू सो मच सर,
वेलकम जी जनाब,
मेरा हो गया सवाल,
बहुत शुक्रिया,
अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया
जी। वालेकुम अस्सलाम
सर, ये मेरा सवाल कलंदर शऊर से है सर, पेज नंबर 90 पे, तर्के दुनिया क्या है सर। इसमें एक मर्तबा एक शागिर्द ने हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह से सवाल किया, तर्के दुनिया क्या है, जिसका जवाब दिया कि दुनिया में रहते हुए आदमी को दुनिया नजर ना आना। तो सर इसकी थोड़ी सी वजाहत दरकार है सर, इसको किस तरह,
मतलब अपने ध्यान में रहो, मतलब ये कि अपने ध्यान में रहो। अब मिसाल देखें ना, आप अपने ध्यान में काम कर रहे हैं, आप फर्ज करें कि कुछ कपड़ा नया डिजाइन कर रहे हैं या सी रहे हैं और पूरा आपका ध्यान उस कपड़े में है। अब घर में क्या हो रहा है, आपको नजर तो आ रहा है, हो रहा है घर में, लेकिन आपका ध्यान उधर नहीं है। तो तर्के दुनिया का मतलब है ध्यान हटा के अपने अंदर देखें। सारा रूहानियत का निजाम क्या कहता है कि आदम को जब बनाया तो आदम अपने इनर में ज्यादा देखता था,
इनर में जी बिल्कुल
ठीक है ना, ये आदम की बेसिक साख्त ये है कि वो अपने इनर में देखता है, बच्चा पैदा होता है तो वो अपने अंदर मगन होता है, वो अपनी दुनिया में मगन होता है, हाथ हिला लेगा, टांग हिलाएगा, मुंह में अंगूठा डाल के चूस रहा है, वो अपने साथ खेल रहा है। रफ्ता रफ्ता क्या हुआ कि हम दुनिया में इन्वॉल्व होते चले गए, ये दुनियावी इन्वॉल्वमेंट जो है अब इसको आपने हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, दुनिया तो अपनी जगह कायम है, आपको हर जिस चीज की जरूरत है आपने इस्तेमाल भी करनी है
जी सर।
अब आप कह नहीं कि घर गलत है, घर बनाना ये तो दुनिया के दुनियादारी में आ जाता है, नहीं तो आप रहेंगे कहाँ। अब घर बना के उसमें आप अपने इनर में ना रहें, आप घर के उस की मालिश करते रहें और पॉलिश करते रहें तो ये तो बात ठीक नहीं होगी ना भाई। रहने की जगह है, इस्तेमाल करें, अल्लाह अल्लाह खैर चलो, इतनी तवज्जो दें जितनी देनी जरूरी है। तरके दुनिया का ये मतलब हरगिज नहीं है कि दुनिया को छोड़ दो, तरके दुनिया का मतलब है इसको ध्यान ना दो, आप अपने इनर में उतर जाएंगे तो दुनिया छूट गई कि नहीं छूट गई, लेकिन आप रह तो दुनिया में रहे हैं इसलिए आपको दुनिया के साथ चलना भी है। वाजे हो गई बात? वेलकम। जी
अस्सलाम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम
सर। एक सवाल था जो बहुत दिनों से मेरे रहने का आस्थाने से मुतालिक, तो 4-5 दिन पहले वाकई सच्ची एक गहरी नजर से गुजरी। उन्होंने लिखा था कि ये जो आस्थाने हैं ख्याल भेजने के टेलीग्राफ ऑफिस हैं और वो हर वक्त ख्याल भेजते रहते हैं।
सही,
हर वक्त ट्रांसमिशन हो रही है, कभी आप इनके पास जाएं तो ये मुमकिन है कि वो आपके ख्याल की लाइन मिला दे। तो सर जरा इसकी वजाहत कर दें।
क्या वजाहत कर दूं? देखिए सच्ची बात यह है कि आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ कायम होना चाहिए, ठीक है ना
जी।
ये है लुबे लुबाब सारी गुफ्तगु का या सारी किताबों का या सारे सलासल का। कुरान का बेसिक थीम भी यही है कि भाई बंदे का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ाओ, बंदे को यही कहा गया कि तुम अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ो। अकीमु सलात का असल मतलब ये। अब हम चूंकि मादी शऊर के इतने खुगर हैं, इतने आदि हैं कि हमें ये ताल्लुक भी मादी तौर पे जोड़ना है। जो अब देखे ना ये वायरलेस है ना, ये इस वक्त आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो कोई तार जुड़ी हुई है? सिर्फ नंबर का पता होना जरूरी है ना। अगर आपने नंबर गलत मिलाया तो क्या बात मेरी आपकी हो सकती है?
नहीं।
और करें तो ये आस्थाने जो हैं आपको सही नंबर बता देते हैं कि भाई ये नंबर डायल करो तो ऊपर चढ़ जाओगे, यानी तुम्हारा राबता कायम हो जाएगा। तो ये मतलब है हजरत वासिफ साहब की गुफ्तगु का। ये लफ्ज आस्ताना जो है ना, ये इसकी बड़ी बारीक बात आपको अर्ज करने लगा हूं। जहां बैठते हैं, बैठने की जगह को आस्ताना कहते हैं। आपको सुन के हैरत होगी कि सलात का असल मतलब है आराम से बैठना। स्वल कहते हैं बट्स को, ये हमारे मतलब जब हम जमीन पे बैठते हैं तो जो हिस्सा जमीन से लगता है उसको स्वल कहते हैं। तो आराम से बैठने की जगह का नाम है आस्ताना। अल्लाह कहता है अकीमु सलात, यानी आराम से बैठ जाओ। देखिए कानून समझें, जब हमारा जिस्म साकत हो जाएगा तो दिमाग काम करेगा, जब दिमाग साकत होगा तो रूह काम करेगी। मुराकबा क्यों करवाया जाता है? कि आप साकत होके बैठना सीखें ताकि आपका जहन काम करे। हम फिर जहन को शांत नहीं करते। भाई जहन शांत होगा तो रूह काम करेगी ना। अगले मरहले पे जाने के बजाय हम पलट के जिस्म की तरफ आ जाते हैं। मेरी टांग सो गई, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरी कमर झुक गई। ओ भाई झुक गई तो झुक जाने दो, तुम क्यों तो चिंता कर रहे हो, आराम से बैठे रहो। नहीं, आराम ही से तो नहीं बैठना। हमने आस्ताने वाले आपको ये सिखाते हैं, उन्होंने नाम ही आस्ताना रख दिया कि आराम से आगे बैठो। और करें, अल्लाह क्या कह रहा है, अकीमु सलात, 131 दफा ये हुक्म आया कुरान में। हमने क्या कर दिया, पढ़ने लगा दिया, पढ़ने पढ़ना। भाई पढ़े, लेकिन अब जब भी कोई बंदा शिकायत करता है कि जी मुझे नमाज के दौरान बड़े ख्यालात आते हैं, ख्यालात आते हैं, ये सबका तजर्बा है कि हाँ क्यों, क्योंकि जो ही आप नमाज में साकत होते हैं तो दिमाग काम करना शुरू कर देते हैं। अब बजाय इसके कि दिमाग को शांत किया जाए, उसको साकत कर दिया जाए, उसको बिठाया जाए ताकि रूह हरकत करे, वो हम करने नहीं देते। ठीक हो गया
जी सर। सर एक सवाल और है।
इरशाद।
क्या जिंदगी चॉइसेस का नाम है? इंसान की तकदीर इन्हीं फैसलों से जन्म लेती है जो लेता है?
बहुत हद तक जी हाँ।
हेलो
जी हाँ, बहुत हद तक, क्योंकि आपको इख्तियार दिया गया नियत का, ये चॉइस जो है नियत का है, तो सारा आपका खेल है नियत का। लेकिन इसमें दूसरा फैक्टर जो खेल में है वो आगे जाके वो भी नियत ही पे, मैंने कहा इसीलिए कहा बहुत हद तक, हालात और वाकयात, ठीक है ना। देखे ना, अब आप कहें कि जी मैं बादशाह बन जाऊं, लेकिन अब अल्लाह ने आपको जिस घर में पैदा किया उनको ये शऊर ही नहीं है बादशाहत क्या होती है, तो आप कहां से बादशाह बन जाएंगे। तो आप कहें कि जी मेरी नियत तो बादशाह बनने की है, तो ये फिर मतलब यहाँ आके जरा क्लैश आ जाता है ना। तो एक फैक्टर है हालात और वाकयात, हालात जो चाबी भरेंगे, आपको वैसे खेलना होगा, लेकिन आपकी नियत का, आपकी चॉइसेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, मतलब है आपको अल्लाह ने जिन भी हालात में डाला आपने वहां ऐसे फैसले लिए, ऐसी नियतें की, ऐसे डिसीजन लिए, ऐसी बातों को चूज किया जिनसे आप आगे और आगे और आगे और आगे बढ़ते हुए अपने इनर की सलाहियतों को बढ़ाते चले जाएंगे, चले गए और आप कामयाब होते चले गए। ठीक हो गया। और अगर आपने फैसले गलत लिए, चॉइस ही मतलब गलत चूज किया, हालात के प्रेशर में आके आपने गलत फैसला ले लिया, तो उसकी सजा भी तो आप ही ने भुगतनी है ना।
जी,
जी वाजे हो गई बात
जी सर। सर एक सवाल और है।
इरशाद।
क्या शे को एक यकरंगी में देखना रियलिटी या है जानी डार्क प्रोजेक्ट करे, और शे को मुख्तलिफ रंगों में तकसीम देखना इल्यूजन या जानी डार्क? इसको थोड़ा सा वाजे
देखे ना, आप एक चीज को देख रहे हैं, आप मादी खदो खाल में देख रहे हैं, रंगों में देख रहे हैं, ठीक है। इसकी बेस क्या है? मसलन आप गुलाब को देख रहे हैं, अब गुलाब की बेस क्या है? गुलाब की बेस उसके अजदाद, यानी गुलाब की पूरी नस्ल चलते हुए आपके सामने आई है ना, एकदम ही तो नहीं कहीं अचानक वजूद पा गया। अब ये जो गुलाब की नस्लें पिछली और आगे गुलाब की फिर औलादे भी होंगी, ठीक है, उसके बीज बनेंगे, उसके मजीद पौधे बनेंगे या उसकी कलमें कटेंगी और वो आगे ग्रो करेंगी। अभी माली के सामने ना पिछली नस्लें हैं ना अगली नस्लें हैं, तो शय जो है ये फानी है और ये इल्यूजन है। लेकिन जो अजदाद गुजर चुके हैं उनका रिकॉर्ड अपनी जगह, وہ اصل ہے.
اصل
لیکن آپ کو نظر تو نہیں آ رہا اس کا رنگ, تو وہ یک رنگی میں ہے, کیونکہ ہیں تو صحیح, ایک چیز ہے تو صحیح. اسی طرح اس کی اولاد ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن ہے, ہوگی تو صحیح اصولن قانونن, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ اگر ہم امیجن کریں کہ بھئی میں اس کی اتنی کلمیں کاٹ کے یہاں پوری کیاری بھر دوں تو اس پہ اتنے پھول لگیں گے, تو یہ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ, یہ یکرنگی میں دیکھ رہے ہیں. لیکن جب وہ مظہر بنتا ہے تو وہ بے رنگی, یعنی کہ رنگینی میں آ جاتا ہے. وہ یکرنگی سے بے رنگی میں چلے گئے, سوری رنگینی میں اتر آئے. اگر آپ اس یک رنگی کے بھی اوپر اٹھ جائیں کہ یہ علم شے کس کا ہے, کس نے سوچا گلاب کو ڈیزائن کس نے کیا, تو یہ بے رنگی ہو گئی. اس درجے پہ سوچنا جو ہے یہ بے رنگی کہلائے گی. بہت شکریہ.
یہ سورہ عذاب کی آیت نمبر 43 ہے. هو الذي يصلي عليكم والملائكه يخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اور سورۃ 56 اسی سورت کی آیت 56 ہے. ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. تو ان میں دونوں میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ رحمت بھیجتا ہے, یہاں مومن پہ کہا ہے, وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو تھوڑے سے واضح,
اصل میں سل کا لفظ ہے نا, ان اللہ و ملائکتہ ہی یصلون علی النبی, ٹھیک ہے. یصل سل آ گیا, وہی آرام سے بیٹھنا ابھی بات ہو رہی تھی. اصل میں جب رابطے میں دو ہستیاں, دو ذہن, دو روحیں یا دو ہستیاں آپس میں رابطے میں آ گئیں, اس ربط کو سل کہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے ساتھ رابطے میں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو تم بات مانتے ہو, صلوا علیہ, ان کے ساتھ جڑ جاؤ, وسلموا پورے کے پورے, تسلیمہ سبمٹ کرتے ہوئے. اب یہی تعلق اللہ ہر بندے سے چاہتا ہے. اب بندوں کو اس آیت میں یہ بتایا کہ دیکھو تم براہ راست میرے سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے, تو یہ نیچے گرڈ اسٹیشن ہے, وہاں سے کنیکٹ ہو کے اس کے تھرو آ جاؤ. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یہ استری لگانے کے لیے گھر میں وہ اکثر ایکسٹینشن یوز کرنی پڑتی ہے, اس میں کئی جگہ پلگ لگ سکتے, مطلب ہے ادھر وہ ساکٹ میں ایک کنیکشن ہوتا ہے, لیکن آگے وہ ایکسٹینشن جو ہوتی ہے اس میں 6-7 پلگ لگ سکتے ہیں. اب یہ بھی ایک استعارہ ہے, ایک مثال ہے کہ بھئی اس طرح اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے نبی کے ساتھ رابطے میں آ جائیں, کیونکہ نبی رابطے میں ہے مجھ سے, تو آپ کا رابطہ مجھ سے بھی قائم ہو جائے گا. ہم نے کیا کہا, اللہم صلی اللہ, اے اللہ تو پہ جی جا, تو جڑیا رہو. یہ کیا بات ہوئی, جی. تو اس کا اصل مطلب یہ بنتا ہے کہ اے اللہ تو میرا تعلق جوڑ دے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تعلق کے حوالے سے, جی.
43
آیت میں بھی مومنین سے بھی یہی کہا گیا ہے, بالکل, کہ میرے سے رابطے میں رہو. ہاں جی جی جی, یہ سل ہی سے صلات ہے نا, اقیم الصلات. سل کہتے ہی تعلق اور ربط کو ہے. جی وعلیکم السلام.
تھینک یو سر. سر یہ کچھ کوشچن میرے بیٹے نے پوچھے تھے, اس کو شاید کرنا نہیں آیا, لیکن میں ان کو دو میں डिवाइड कर लेती हूँ. एक तो ये कि नॉलेज ऑफ द बुक, ये जो आपकी किताब में मैसेज अंडरलाइन कुरान, इसमें जो अब्बा हुजू का फॉरवर्ड है ना, उसमें दो बात लिखी गई है कि अप्रियत वन ऑफ द जिन सेड आई कैन ब्रिंग इट हियर बिफोर यू एडजॉइन द कोर्ट, यानी कि जो वो लाने के लिए कहा था, तखत लाने के लिए कहा था शिफा था जी. तो एक तो बात ये हो गई, और दूसरी फिर जब उसको पढ़ा था तो वहाँ लिखा हुआ है सबसे आखिर में कि इट क्लियरली मीन्स दैट एडम इज सुपीरियर टू एंजल्स ओनली बिकॉज ऑफ द नॉलेज व्हिच एंजल्स एंड जिन डिडंट नो. अब जब जिनको पता ही नहीं है उस नॉलेज का और हम सुपीरियर है, तो जिन अप्रिय जो है वो कैसे कह रहा था कि मैं लेकर आ जाऊंगा एजेंट होने से पहले.
वो देखे, लेकिन आदम की सुपीरियरिटी तो आसफ बिन बरकिया ने साबित कर दी ना. जिनके पास देखे ना एक ताकत थी, एक पावर है, और वो उस पावर को इस्तेमाल करके वहां से जाता और कोर्ट फर्ज करें आधे घंटे में एडजर्न होनी है, घंटे में एडजर्न होनी है, यस चार घंटे चलनी है कोर्ट, उसने कहा कि मैं इतनी देर में ले आता हूं, ठीक हो गया. तो अफरियत ने ये जब कहा तो उसने अपनी ताकत का को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहा. वो पावर्स है फ्लाई करने की, इतने वजन को कैरी करने की, ये ताकतें हैं, सलाहियतें हैं. उस बंदे ने क्या कहा कि मेरे पास नॉलेज है, मैं उस सांचों का इल्म जानता हूं, इल्मुल किताब है. उसने कहा मेरे पास इल्मुल किताब है, किताब का इल्म. हमने तर्जमा कर दिया कि वो कोई किताब थी जिसको उसने पढ़ा हुआ था, ठीक है. तो यहां पे ये सवाल उठा कि कुरान भी तो किताब है, क्या ये कुरान में इल्म मौजूद है. तो मैंने इसीलिए आपको बड़ी वजाहत से बार बार अर्ज किया है कि किताब सांचे का मेटाफर है, यानी किताब जो है ये एक मेटाफर है, एक असेंबली ट्यूब है. किस चीज का? एक डाई का, एक मोल्ड का. वो बंदा जो सिस्टम के सांचों को समझता है, उसने क्या किया कि जहन की ताकत को इस्तेमाल करके दिखा दिया, क्योंकि उसके पास नॉलेज ज्यादा था. तो बात वाजे हो गई?
जी, बहुत अच्छी तरह से हो गई. और इसी से रिलेटेड दूसरा ये सवाल किया गया था कि ये जिन्नात जो है वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कैसे हो जाते हैं,
क्योंकि वो मुकल्लफ हैं. देखें मुकल्लफ समझें, यहाँ पे ये लफ्ज, ये दो मखलूकात जो हैं, मखलूकात में से ये दो नोए ऐसी हैं जो आंसरेबल हैं फॉर देयर डिसीजंस, फॉर देयर डीड्स. जो भी ये करते हैं उसके नताएज इनको खुद भुगतने हैं. मुकल्लफ का मतलब है आंसरेबल होना, ठीक है. इनको कानून, अल्लाह ने नियत का इख्तियार दिया और साथ में कहा कि तुमने नतीजा खुद भुगतना है भाई, ठीक है.
जी.
तो बात वाजे हो गई कि उनके पास, जिन्नात के पास चूंकि इख्तियार दिया. अब ये इख्तियार को जैसे इंसानों में नबी आए हैं, वहां जिन्नात में भी नबी आए हैं. और ये कुरान से साबित है कि कई जिन्नात ने आके हजूर अलैहिस्सलाम से कुरान सुना, खास तौर पे ताइफ से वापसी पे. सूरह जिन भी है ना कुरान में. तो वो जाहिर है कि जब हजूर अलैहिस्सलाम की बर्तरी है, सुपीरियरिटी है, वो उनसे मुसलमान हुए, तो जाहिर है कि इस्लाम वहां पे इस तरह हजूरी के जरिए फैला ना. इस्लाम क्या है? अल्लाह के मुताबिक जिंदगी बसर करना, जैसी अल्लाह चाहता है बस यही इस्लाम है. और क्या इस्लाम? अपनी करेक्शन करते रहना, ठीक है ना. ये तो हमने वो सेग्रीगेशन की है या सेक्ट बना दिए हैं कि जी ये मुस्लिम है तो ये नॉन मुस्लिम है. कुरान ने खुद कहा है कि भाई उनका अजर है जो भी बात को समझते हैं, मानते हैं और उस पर अच्छी तरह अमल करते हैं.
बहुत बहुत शुक्रिया.
आपका शुक्रिया जी. जी, और कोई या काफी है? चलें फिर, रहती है बात, ठीक है।
अगर
जी
कोई और नहीं पूछता
जी जी इरशाद।
सर, ये एक जनरल सा एक क्वेश्चन है कि हम लोगों को सबको ये पता है जब मर जाते हैं तो हिसाब किताब होता है, तो सर जिस्म तो मर जा खत्म हो जाता है, तो फिर ये हिसाब किताब कौन देता है सर?
आपका जहन, नस्मा, क्योंकि
नस्मा जी सर,
दुनिया में कौन चला रहा है आपको? आपका नस्मा ही चला रहा है ना।
चला रहा है
नस्मा को एनर्जी कौन दे रहा है? रूह दे रही है। ये रूह जो है, ये उसको एनर्जी देती है, ये ऊपर चला जाता है, यानी जोन चेंज हो जाता है। यहाँ वो बॉडी के साथ काम कर रहा है, उसके बाद ऊपर जाके वो बॉडी बीच में से डिस्कार्ड हो जाती है। तो आंसर वगैरह सारा जो भी करना है वो तो नस्मा नहीं, जो जहन यहाँ बन गया वही आपका ऊपर जाके काम करेगा।
जी सर, एक सवाल और कर लूं?
इरशाद।
सर ये बातें मेरे मुराद की में से ही है सर, पेज नंबर 377 के हुजूर ताजुद्दीन बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह दीवार से इसलिए तो गुजर गए थे कि उनके जहन में से ये वक्फे हजफ हो गए थे। अगर शौरी तौर पर वो कोशिश भी करते तो ऐसा हरगिज ना कर सकते थे। ये सब लाशऊरी तौर पर होता है, यानी जब जहन शऊर से हट जाता है तब ऐसा होता है। सर ये बेसिकली ये पूछना चाह रही थी कि जहन का शऊर से हट जाने का क्या मतलब है, और इसी से रिलेटेड एक और सवाल इसी से मिलते हुए बनता है कि सर शऊर तो हर उस बात से घबराता है जो उसे लाशऊर की तरफ ले जाती है। 393 का
शऊर तो हर उस बात से घबराता है जो उसे लाशऊर में ले जाती है। सारे कारनामे लाशऊर सर अंजाम दे रहा है और ये उसी से घबरा रहा है, ये तो शऊर का आलम है।
अच्छा,
आपने तो मसले ही मेरे लिए बहुत आसान कर दिया। देखे ना, हजूर मुर्शिद करीम ने बताया कि ये जो इस तरह की करामात हैं ये लाशऊर में जाके होती हैं। ये होती तब है जब बंदा शऊर में ना हो, ठीक है?
सही हो गया।
अब जब आप शऊर में हैं तो जाहिर है कि लाशऊर तो नहीं काम करेगा यहाँ, लिहाजा आप दीवार से नहीं गुजर सकते थे। लेकिन लाशऊर में वो सारे अलूम मौजूद हैं जो दीवार के खानों में आपके मॉलिक्यूल्स गुजार सकते हैं।
सही हो गया सर। थोड़ा सा ये इसको उसके जहन को शऊर से हटाना,
जहन, अब जहन जो है ये देखें और चीज है नस्मा, अब शऊर वो चार दर्जे बताए थे ना, आपने पढ़े शौरे चहारम, शौरे स्वयं, शौरे दोयम और शौरे अव्वल। असल में इनफरादी शऊर से उभरने का नाम, जब आप उभर जाते हैं, हट जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, तो आप नोई शऊर से आशना हो जाते हैं। अब ये नोई शऊर इस शऊर के लिए तो लाशऊर ही है ना। अब आप जब कायनाती शऊर की सतह पे कदम रख देते हैं जिसे शऊर द्वयम कहा है, तो इसका मतलब हुआ कि आप शऊर स्वयं से हटेंगे तो वहां पहुंचेंगे ना। यानी जहन पहले जब शऊर में, चौथे शऊर में है तो वो चौथे शऊर को इस्तेमाल कर रहा है, आप उसको रागब करते हैं कि भी जरा ऊपर उठ, जरा ऊपर उठ, तू नौ की बात सोच, सारे इंसानों की बात सोच, सारे इंसानों को लेके चल।
सही हो गया सर।
तो जहन और शऊर का फर्क यहाँ पे क्लियर हो गया आपके सवाल।
जी 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 सर, सही हो गया।
कि असल सिलसिला यह कि जहन जिसको नस्मा कहा गया है वो इस्तेमाल करे शऊर को, वो इस्तेमाल करे लाशऊर को, वो इस्तेमाल करे तहते लाशऊर को।
सही हो गया सर।
अब वाजे हो गई बात बिल्कुल। हाँ, जाहिर है कि आप देखें, आप समझेगा तो आपका जहन, اس وقت ذہن آپ کا انفرادی شعور میں محدود ہے. اب جب آپ کا ذہن انفرادی شعور کو نظر انداز کرے گا اور اوپر اٹھے گا تو نوعی شعور سے آشنا ہو جائے گا. جب آپ نوعی شعور سے آراستہ ہونے کے بعد اس سے ابھریں گے, کون آپ کہہ رہا ہوں آپ ابھریں گے, تو آپ سے مراد آپ کا ذہن ہے نا. ٹھیک ہو گیا؟
جی سر, جی سر.
چلیں اسی پہ وہ ماں لینا الا البلاغ کہہ دیتے.
چھوٹا سا وہ ہے
ارشاد,
یہ جو گھمل اور خودداری, سر اس میں یہ جو ایک باریک سی لائن آتی ہے سر, اس کو کیسے سمجھیں گے؟ میں اس میں جو فرق ہے
خود دار, خود اپنے گھر میں رہنا, اپنی لمٹس میں رہنا, یہ ہے خودداری. اور گھمنڈ کہتے ہیں اکڑ کو, گھمنڈ کہتے ہیں تکبر کو. دیکھے نا, ایک بندہ اپنے گھر میں اپنی لمٹس میں, یہ خود داری, اس نے خود کو رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ دوسرے میں مداخلت نہیں کر رہا, دوسرے کو کرنے نہیں دے رہا. کہتے ہیں یہ بڑا خوددار آدمی ہے, یعنی یہ کسی سے قرضہ بھی نہیں مانگتا, کسی کی خیرات بھی نہیں لیتا, یہ بڑا خوددار آدمی, اس نے خود کو مینیج کیا ہوا. کہتے ہیں نا, ہم انہیں معنوں میں استعمال کرتے ہیں. اب گھمانڈ جو ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, اس میں تکبر آ گیا, اس میں اکڑ آ گئی, اس میں ضد آ گئی, وہ آل ٹوگیدر ایک نیگیٹو اسٹیٹ ہے. اس میں آپ, یو آر کیپنگ یور لمٹس, یو آر واچنگ یور لمٹس, یو نو کہ ویئر آئی ہیو ٹو آسک, ویئر آئی ہیو ناٹ ٹو آسک. دیکھے نا, ایک بندہ ہر وقت مانگتا رہتا ہے, ہر ایک سے مانگتا ہے, دوستوں سے بھی مانگ رہا ہے تو, رشتہ داروں سے بھی, ماں سے بھی تو, باپ سے بھی تو, خود بھائیوں سے بھی. تو کہتے ہیں یار یہ بندہ خوددار نہیں ہے. واضح ہو گئی بات؟ چل خوش رہیے, اللہ حافظ.
اللہ حافظ.